आनंद को और बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि वो हमारे अंदर है। ये ऐसे हुआ जैसे हमारे को कोई मानचित्र दे दे बंबई का और हम खड़े हैं कनॉट पैलेस दिल्ली में और किसी एड्रेस को ढूंढे, मिलेगा क्या? मिलेगा? मानचित्र मेरे पास बंबई का है और खड़ा हूं मैं दिल्ली कनॉट पैलेस में और वहां मैं ढूंढू कि यहां मेरे को जो है वो जुहू का मंदिर मिल जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ठीक इस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं सुख को, शांति को, आनंद को, वो हमारे अंदर में है, उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं और वो मिलता नहीं है बाहर और किसी को मिला नहीं है आज तक। शहद की बोतल बंद हो ना, मधु की बोतल बंद हो तो पता है मीठी है लेकिन बाहर से चाटने से तो मीठा नहीं लगेगा, ढकना खोलना आएगा और जब उसको चखेंगे तब मीठा लगेगा ना। तो मधु तो मीठा है, इसका मतलब सुख आनंद शांति सब है तब उसका नाम है। लेकिन अब एक दूसरी बात करते हैं थोड़ी सी। सुख जब होता मिलता है तो थोड़ी देर के बाद में वो दुख में परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे अब गर्मी है, पंखा लगा लिया तो सुख मिल गया और पंखा नहीं है तो दुख हो गया, तो सुख परिवर्तित होकर दुख हो जाता है। शांति परिवर्तित होके अशांति हो जाएगी, लेकिन आनंद का प्रतिलोम पर शब्द है ही नहीं, आनंद शब्द ही नहीं है कोश में। क्यों? शरीर से सुख का अनुभव होता है, मन से शांति का अनुभव होता है और आत्मा से आनंद का अनुभव होता है। शरीर से सुख का अनुभव होता है, मन से शांति का अनुभव होता है और आत्मा से आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो अनुभव होता है आनंद का, ये आत्मा के स्तर का है। और हम जितने भी हैं, जितने भी जीव संसार में हैं, हरे कृष्ण, स्वागत है,
धन्यवाद।
अब हम आपके साथ सामने ये बात रखने चाह रहे हैं कि हम दो चीजों के बने हुए हैं। एक ये शरीर है जो प्रकृति ने बनाया है और हम आप स्वयं आत्मा हैं जो भगवान का अंश है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जितने भी जीव इस संसार में हैं वो सब मेरे अंश हैं। तो आत्मा, और फिर यहां तक भगवान ने कह दिया अहम बीज प्रदापिता सर्व योनेशु कौन्तेय मूर्ते संभवंतिया ताशाम ब्रह्मादियों ब्रह्मादियों अहम बीज प्रदापिता। अब भगवान कहते हैं मैं आपका पिता हूं, बीज देने वाला। इस संसार में डॉक्टर साहब किसी का जन्म होता है तो ये शरीर पूरा तो मां बनाती है, बीज देने वाला पिता होता है। ठीक ऐसे इस प्रकृति का जो शरीर हमारा बना हुआ है ये प्रकृति माता ने दिया, लेकिन बीज देता भगवान, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है भगवद गीता के शब्दों में। और एक ही शास्त्र जिसके अंदर सारे शास्त्रों का सार हो, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र जिसके अंदर सब शास्त्रों का किन्नई शास्त्र विस्तृत, और दूसरे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, जो सब शास्त्रों में है वो इसमें है। हमारे वेद वेदों को समझाया उपनिषद में और सर्व उपनिषदों गावो दोगदा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद अगर गाय बन जाए तो गाय के अंदर से मुख्य चीज क्या है? दूध। और दूध भी निकालना आए, आप तो व्यंजनों में गांव में रहते हैं, आपको गाय का भी पता है और दूध कैसे निकालते इसका भी पता है, लेकिन शहर वालों को यह भी पता नहीं है कि गाय से दूध निकलता है। मुंबई के अंदर सी फॉर काओ लिखा बोर्ड के ऊपर और काव का फोटो दिखाया तो लड़कों ने कहा इसमें थैलियां कहां है दूध की, इसमें दूध की थैलियां कहां लगी होती है। वो समझेंगे गाय दूध की थैलियां देती है, उनको ये पता नहीं है कि स्तन से दूध निकालते, नहीं मालूम है। गाय देखी नहीं है बॉम्बे वालों ने, बॉम्बे के बच्चों ने गाय नहीं देखी, वहां गाय रखना मना है शहर में, कुत्ते रख सकते हैं, उन सब घरों में बड़े घरों में कुत्ते हैं लेकिन गाय नहीं रख सकते, गवर्नमेंट की मना है। और ये भारत के अंदर धर्म भूमि के अंदर ये बात है कि गाय नहीं रख सकते, गाय शहर से बाहर रखनी। और पहले पूछते थे आदमी दूध और पूत, किसी घर में यही पूछते थे, दूध पूत सब कुशल मंगल है यही पूछते थे ना। तो बात कर रहे थे क्या गाय से दूध निकालना भी किसी को आना चाहिए, और सारे शास्त्र रूपी शास्त्र दिए किसने, वेद दिया किसने, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहे वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम, सारे वेदों को मैंने दिया है और वेदों में मुझे ही जानना उद्देश्य है। ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, पुरुषोत्तम योग उसका नाम है। तो भगवान कहते मैंने ही दिया है, वेद मैंने दिए और वेदों से मुझे ही जानना है। वो भगवान जिसने वेद दिए, वो भगवान सारे वेदों का सार गोपाल नंदन गौपाल गौ की पालना करने वाला, जिसके घर में जो गाय के अंदर से दूध निकालना जानता है, उसने सारे शास्त्रों का सार निकाला है, लेकिन पिएगा कौन दूध। पार्थो वत्स, अर्जुन को बछड़ा बना दिया वत्स, और वत्स का अर्थ होता है जिससे बहुत प्रेम स्नेह किया जाए। भगवान का नाम है भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्त को वत्स मानता है। और वत्स की पहचान क्या है, गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना तो उसको चाटती है, मल मूत्र अपना लगा होता है, गोबर है मूत्र उसके ऊपर लगा है, उसको चाटती है। लेकिन गाय के आपसानी में जो गाय का जो भूसा देते हैं उसके अंदर गाय का अपना मूत्र होगा तो नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, खाएगी नहीं, लेकिन बच्चे को चाटती है, क्यों, बहुत प्रेम है स्नेह है, उसको कहते हैं भक्त वत्सल। गाय के बच्चे का नाम है वत्स और गाय उसको चाटती है, और ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। उसने अर्जुन को वत्स बनाया, वत्स का मतलब अपने कृपा का पात्र, अपने प्रेम का भाजन। वैसे भगवद गीता को भगवान ने महाभारत में कह दिया गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरी दिल है, तो दिल किसको देगा आदमी इस दुनिया में, दिल आदमी किसको देता है, जिससे प्रेम करता है, जो अपना मिल होता है उसको दिल देता है, और भगवान ने अपने भक्त को अपना दिल दे दिया। दिल की बात, गीता भगवान का दिल है, ये भगवान महाभारत में कहते हैं। वो दे दिया अर्जुन को और दे दिया बछड़ा बनाकर, और फिर कह दिया इसके बाद भी भविष्य में कोई धीर होगा, धीरजवान होगा, सुधीर भोक्ता, वो आगे कोई सुधीर, एक धीर का मतलब धीरजवान होता है, और सुधीर का मतलब जिसने जीवन में अपने आप को ठहराव जिसके जीवन में आया है। दही से दूध से दही बनाना आता है आपको, आता है गांव वालों को, लोगों को पता नहीं, खोपा हम पूछते हैं बाहर के लोगों को दही कैसे बनाते, बोलते नहीं बाजार से लाते हैं ना। कृष्ण का एक नाम माखन चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं ना, माखन चोर कृष्ण का एक नाम है ना। तो हमारे घर में कभी माखन चोरी करने आया क्या, मेरी माँ आपके घर आया क्या कभी, क्यों, माखन पहले तो निकलता कैसे है वो भी पता नहीं है लोगों को, माखन कैसे निकलता है, दूध को गर्म करना पड़ता है और फिर थोड़ा हल्का ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर दही डालना पड़ेगा, रात सारी माटी के अंदर रखना पड़ेगा और तब सुबह दही बन जाएगा, और फिर दही को मंथन करना पड़ेगा तब उसके ऊपर मक्खन बन जाएगा। और ये प्रक्रिया क्या है, हमारे जीवन में थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। दूध तपता है दूध, तो जीवन में जब हम तपस्या करेंगे और फिर उसके अंदर दही डालना पड़ता है, जामुन डालना पड़ता है, वो कोई साधु संत पुरुष भगवान के प्यारे ने भगवान के नाम जपने का कोई जामुन उसमें डाल दिया तो हमारे जीवन में ठहराव आ जाएगा। दही झुलकता नहीं है, दही ही डब्बे के अंदर पड़ा रहेगा, दूध तो झुलकेगा लेकिन दही खराब भी नहीं होगा, दही 3 दिन चल जाएगा, नहीं तो कढ़ी बन जाएगी 4थे दिन, दही चल जाएगा दूध नहीं चलेगा। तो जीवन दही जैसे ठहराव वाला होता है, गहराई आती है उसके जीवन में जब किसी संत साधु सतपुरुष से भगवान की प्रेरणा से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मिल जाए तो जीवन दही जैसा बन जाएगा। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने का मतलब जो नाम सुमरण के लिए मिला है उसको जपना पड़ेगा, जब जपेंगे तो हमारा जीवन मक्खन जैसा हो जाएगा, और मक्खन दही से ज्यादा रहता है, और उसका घी बन जाए तो सालों तक रहे, पुराना घी बहुत अच्छा होता था पुराने जमाने में, तो वो ज्यादा रहता है, ठहराव उसमें आता है, तो ऐसे जीवन में प्रक्रिया जिसकी आती है वो उसका मन, फिर उसका मन मक्खन जैसा नवनीत हो जाता है। नवनीत मक्खन को कहते हैं, नवनीत का अर्थ है मक्खन, ताजा निकला हुआ मक्खन। और कन्हैया मक्खन कौन सा चुराता था? जो अभी अभी गोपी ने 4 बजे मंथन किया, 4:30 बजे मक्खन रखा ऊपर और 5 बजे पानी के भरने गई, तब बोलती थी कन्हैया बहुत सुंदर मक्खन है हमारे घर आना, निमंत्रण दे के आती थी हमारे घर मक्खन खाने आए, लेकिन कौन सा वाला? अमूल वाला, जो पूरा कितना 6 महीने पुराना बना है, कब का नमक डला हुआ मक्खन थोड़ी खाए, ताजा मक्खन। अभी भी गांव के पुराने लोग होंगे तो ताजे मक्खन को और दूसरे दिन के मक्खन को पहचानते, कल का मक्खन क्यों दिया है ये तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे, कल वाला खट्टा मक्खन क्यों दिया है, मक्खन दूसरे दिन को पहचानते थे लोग, मटके के दूसरे दिन के पानी को पहचानते थे हमारे लोग, कल के भरे हुए मटके का पानी क्यों दिया है, आधा मटका है तो भी गिरा दो, ये आप तो गांव वाले मालूम है कि नहीं, क्यों गिराते थे यानी मटके का पानी। पानी के अंदर 1-2 बुदबुदी भी हो गए, फफूंद आ गए, तो उसमें इंद्र का चौथाई पाप आ गया, ब्रह्म हत्या का। इंद्र ने अपने पाप को 4 जगहों में दिया था, उसमें से एक जल को दिया था, इसलिए रखा हुआ जल कभी हमारे लोग पीते नहीं थे दूसरे दिन का। ये भागवत की कथा है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उसने 4 जगह बांट दिया वृत्तासुर को मारने का, तो वृत्तासुर का तो बाद में लगा, दधीची के 4 जगह पाप को दिया, उसमें से एक पानी को दिया, तो पानी ताजा हमारे पास पीते थे। लेकिन ये सब हमारी जो पुरानी जो रीतें रस्में थी, जो नियम थे घर में, वो आध्यात्मिक थे और ये अब समाप्त होते जा रहे। हर एक हमारी घरों के अंदर पुरानी प्रक्रिया है वो आध्यात्मिक थी। सुबह सवेरे उठने का नियम था, 4 बजे से पहले स्त्री 4 बजे से पहले उठ के मंथन किया करती थी, आटा अपना घर में तैयार करती थी कि नहीं करती थी? सुबह सवेरे उठने का नियम था कि नहीं था? गांव की रात को सुबह सूरज उगने के बाद तो सोच नहीं सकता है कोई उठने का, क्योंकि सवेरे उठने वाला सतोगुणी होता है और सतोगुणी सुख ही केवल सुख को पा सकता है। जब से सुबह उठना हमने खत्म कर दिया, बड़े शहरों में सुबह उठने का नाम ही लोगों ने भूल गए कि सुबह कोई उठा भी जाता है। सूर्य उगने से पहले उठने वाला अपने आप का जीवन में भाग्यशाली होता है, उठना चाहिए, ये सतोगुण की पहचान है। तो व्यक्ति को पहले सतोगुण के स्तर पे आना चाहिए। रजोगुण लोभ है, रजो रागात्मक, लोभ संगात बंधनात्, लोभ में बांध देता है। और संसार में प्रायः लोग रजो और तमोगुण के स्तर के ऊपर है। ये आध्यात्मिक सत्संग का विशेष उद्देश्य, जब प्रभुपाद जी महाराज वृंदावन से कलकत्ते में जन्म हुआ था और 65 साल की आयु में वृंदावन में आके रहे और ब्रज के अंदर भागवत का बैठ के अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने लगे और उसके अंदर एक जगह लिखा कि दुनिया के अंदर जो आतंकवाद है, जो दुनिया के अंदर चारों ओर से मारा मारी, खून और युद्ध और ये सब कुछ हो रहा है, उसका दायित्व भारत के ऊपर, उसका दायित्व, उसकी रिस्पांसिबिलिटी भारत के ऊपर है। बड़ा आश्चर्य लगा, हम तो अहिंसा वाले हैं, हमने कभी किसी को मारा नहीं, हमारे ऊपर क्यों दायित्व है? तो दूसरी लाइन में लिखा है, क्योंकि हमने ये भागवत धर्म का संदेश दुनिया को नहीं दिया, इसलिए दुनिया बिगड़ के बांदर हो गई। हमने ये संदेश नहीं दिया, ये हमारी गलती है कि हमने भागवत धर्म का संदेश, तो एक धर्म होता है मनु का धर्म, मानव का धर्म, लेकिन भगवान जब धर्म देते हैं तो भागवत धर्म होता है। जब राम जी धर्म दे रहे हैं तो वो निषाद को गले लगा के भाई कह रहे हैं, गुआ तुम मेरे मित्र हो, और गीद को अपनी गोद में बिठा के और उसका अंत्येष्टि संस्कार कर रहे हैं। पक्षी का कभी सुना नहीं अंत्येष्टि संस्कार किया हो, लेकिन जटायु को गोद में राम जी ने बिठाया, दशरथ के लिए जैसे करना चाहिए श्राद्ध तर्पण वैसे बैठ के किया, ये भागवत धर्म है। इसको भागवत धर्म कहते हैं, वो पूरी मानव जाति के लिए, मानव जाति क्या पूरे ब्रह्मांड में जितने पक्षी पशु हैं उन सब के लिए, तो ब्रज के अंदर गाय भी भगवान कृष्ण के पीछे बांसुरी के, हमारे पास माला होती है, हम तो राम राम जपते हैं हरे कृष्ण जपते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास माला थी, लेकिन उस माला के ऊपर गायों के नाम थे, धोली धोली तो धोली गाय आ जाती थी, गोरी तो गोरी गाय आती थी, शाम को एक एक गाय को बुलाते थे और गाय उनसे प्रेम करती थी, हिरणिया उससे प्रेम करती थी, पक्षी उनसे प्रेम करते थे। निस्साधन, कोई साधन नहीं, कुब्जा, कंस को लगाने जा रही अंगराग, कैसे भगवान ने कृपा कर ली मेरे को अंगराज लगा दी, हाँ क्यों नहीं लगाऊंगी, लगाती तो भोजराज कंस को आपको भी लगा देती, क्या अंगराज लगाया खड़े खड़े भगवान ने, वही एक पांव पांव के ऊपर एक हाथ चुटिया में और पीछे पीठ को ऐसे मुक्का दे मारा, एकदम सुंदरी हो गई, कुछ साधन को सुंदर बना दिया। निस्साधन जो कोई साधन नहीं कर सकता है, पत्थर बनी हुई थी अहिल्या गौतम के आश्रम में, विश्वामित्र ने कहा कि इसको आप उसका उद्धार कीजिए, राम जी ने क्या स्पर्श किया और नारी बन गई, कोई साधन नहीं, पत्थर क्या साधन करेगा। तो निस्साधन को, कुछ साधन को जब उद्धार करती है, इसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म का विश्व में प्रचार न करना, यह दुनिया के अंदर आतंक और जितनी बुराइयां हैं उसका कारण है। इसलिए महाराज ने बैठ के अंग्रेजी भाषा में भागवत का अनुवाद किया, क्यों बोला यह भाषा पूरी दुनिया पढ़ती है, इस भाषा में पूरी दुनिया को संदेश जाएगा, और परिणाम क्या निकला, 65 और 70 के बीच में दुनिया के अंदर, विशेष रूप से वियतनाम की लड़ाई के समय में, अमेरिका के सारे नवयुवक पढ़ाई छोड़कर, धन घर परिवार सब छोड़कर हिप्पी बन गए थे, वो हिप्पी जमाना था, किसी की बाई की बात मानना, उनका विरोध करना उनके जीवन का लक्ष्य था, वो दूसरी बात है कि आज हमारे घरों में 30 सालों के बाद बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन उस वक्त में उन बच्चों ने विरोध किया था। और महाराज ने उद्यान में बैठकर, एक पार्क में बैठकर, कुछ भी नहीं, खड़ताल उठा के केवल ये भगवान का नाम गाया, महामंत्र गाया, ब्रह्मा जी ने जो नारद को बताया था कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए, जो सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज ने पूछा कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग तो दोषों का सागर है, और सागर को कोई पार कर जाए ये संभव नहीं है, सागर को कोई तैर के पार कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो कलयुग तो दुखों का सागर है, दोषों का सागर है। तो महाराज परीक्षित को एक दिन जीवन का था बाकी, एक दिन का कुछ घंटे थे, 12वां स्कंद चल रहा था, महाराज परीक्षित ने पूछा कि कलयुग के लोगों के उद्धार का कोई उपाय है क्या, सुखदेव महाराज बताइए। तब सुखदेव महाराज के जीभा के ऊपर सरस्वती आके बैठी और सुखदेव महाराज ने कहा कलेर दोषे निधे राजन, हे महाराज कलयुग दोषों का सागर है। महाराज परीक्षित बहुत घबरा गए, बोला मैं राजा और मैं जा रहा हूं, मेरी प्रजा कलयुग के सागर में डूबेगी, तो राजा का धर्म है प्रजा का उद्धार करना, और मैं प्रजा का उद्धार नहीं कर पाया तो मैं अपने दायित्व को कैसे निभाऊंगा। तो सुखदेव महाराज ने परीक्षित के चेहरे के ऊपर मायूसी को देखा, उदासी को देखा, तो एक शब्द उनके जीभा के ऊपर आया, अस्तिये को महागुण। महाराज एक कलयुग में महागुण है, बहुत बड़ा गुण है कलयुग। अब तो परीक्षित महाराज कहे जल्दी बताइए, बहुत समय कम है, मैं राजा उसका आचरण कर लूंगा तो प्रजा उसको स्वीकार करेगी, ये नियम है, बड़ा आदमी घर का जैसे करेगा परिवार अपने आप करेगा। आज भी घरों में अगर माता भी घर में भगवान की पूजा करती है, घर में लड्डू गोपाल था तो अपनी बहू को दे दिया तो वो भी पूजा कर रही, आज हमारे घर में पूजा होगी तो बच्चे छोटे अपने आप करेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवत्रो जनः, यही भगवत गीता का श्लोक है, जैसे बड़ा आदमी आचरण करेगा साधारण व्यक्ति उसके पीछे अनुकरण करेगा, जैसा वो स्टैंडर्ड स्थापित करेगा और लोग उसका फॉलो करेंगे। और ये श्लोक कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा मैं इसलिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, त्रिलोकी नाथ हूं, लेकिन फिर भी मैं सब काम करता रहता हूं, इसलिए कि मुझे उदाहरण बनना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे और दुनिया वर्ण शंकर बन जाए। ये श्लोक के बाद भगवान ने अपने आप को उदाहरण बताया। तीसरे अध्याय में ये पढ़ के देखेंगे, गीता का श्लोक ऐसे आपस में श्रृंखला है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, असल में भारतवासी हर एक को ये गीता के श्लोक याद होने चाहिए। यही हमारा धन है, यही हमारा धन है। और भारत को इसलिए पहले समृद्ध देश कहा जाता था। बताइए आज तक भारतवासी कहीं बाहर गया आक्रमण करके? नहीं, यहीं आए तो पठान आए, तुर्खान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब यहाँ आए, क्योंकि हम समृद्ध थे, हमारे पास सुख शांति थी, सब कुछ हमारे पास था। हम कहीं बाहर गए हैं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। हम धनी धनी दुनिया के अंदर, संतोष सबसे बड़ा धन है और सब कुछ हमारे पास था। और वो क्या आध्यात्मिकता हमारा बड़ा धन था, और उसका जब से हमारे पास देवाला निकलना शुरू हो गया तब से चरित्रहीनता आना शुरू हो गया। इस वक्त जो अपने नौजवान नशल में, नवयुवकों में जो चरित्र नहीं दिख रहा है, कितने बच्चे आपको मैं पूछता हूं आपके चरण छूते हैं रोज? कितने माता पिता के चरण शाम को दबाते हैं, पिताजी सो जाए उसके बाद सोते, ऐसा उदाहरण है कोई? नहीं है तो क्यों नहीं है? ये संस्कार हमारे क्यों समाप्त हो गए? आप करते थे कि नहीं करते थे अपने जमाने में? जरा ध्यान करके देखो पीछे, हम लोग करते थे कि नहीं करते थे पुराने जमाने के मरे? आपका मास्टर स्कूल से निकलता था, आप गली के अंदर उसके सामने कैसे खड़े होते थे आपको याद है? और आज के मास्टर के सामने स्टूडेंट कैसे खड़ा होता है, देखा है? अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहां से आया? आध्यात्मिकता के लोप के कारण, आध्यात्मिकता के अभाव के कारण हमारी संस्कृति और संस्कार के ऊपर बहुत बड़ी हानि हो रही है। पाश्चात्य संस्कृति का नकल तो कर रहे हैं, लेकिन अपना धन को आज भी हमारा बड़े से बड़ा धन ये भगवद गीता के 700 श्लोक अगर हमारे छोटे बच्चों को हो तो जैसे टीका लगाना जरूरी होता है, पोलियो के ड्राफ्ट बनाना जरूरी है इनको ना? पोलियो के ड्राफ्ट बनाने जाते हो कि नहीं जाते हो? और खसरे का टीका लगाने जाते हैं ना, वो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं उसको, ताकि पोलियो ना हो, टांग ना खराब हो। अरे ये भगवद गीता सिखाओगे तो दिमाग नहीं खराब होगा? ये सबसे बड़ी इम्यूनाइजेशन थी हमारे घरों में, ये दादी सिखाती थी, ये रामायण हमारी दादी घर में सिखाती थी, ये दादी और नानी का काम था गीता भागवत रामायण सिखाना। और जब से ये दादी नानी का हमने घरों से ही निकाल दिया बिचारों को, शहरों में तो उनके लिए जगह ही नहीं रखी है, तो कहां से संस्कार आएंगे? ये संस्कार आध्यात्मिकता के अभाव के कारण हमारे से जा रहे हैं। हमको इसकी सुरक्षा करना, ये बच्चों को अगर भविष्य का उज्ज्वल करना है तो अभी भी हमको तपस्या करके इन संस्कारों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे कौन सी, कृष्ण को गोपियां मक्खन ताजा बना के उस वक्त बुलाने जाती थी कि आइए हमारे घर में मक्खन खाइए। ताजा मक्खन जब तैयार होता था तब बुला के लाती थी। और भगवान जब बहुत गोपियां शिकायत करती थी जब यशोदा मैया से कि तुम्हारा लाला हमारे घर में मक्खन खाता है, तो मैया कहती थी फिर दे दिया करो ना, कितना खाएगा, छोटा बच्चा है ना। तो गोपी ने बोला आइए आइए थोड़ा कन्हैया मक्खन खाएगा। बोले क्यों खाऊंगा, तुम्हारे घर में भीख मंगाऊं क्या? मेरे बाप के घर में 900,000 गाय है नंद बाबा की, तेरे से मिल मांग के क्यों खाऊंगा? तो बोला फिर चोरी करके क्यों खाता हूं? बोला मेहनत करके खाने में मजा आता है, थोड़ा सा मेहनत करके खाता हूं ना, परिश्रम करता हूं, ऐसे मुफ्त का नहीं खाऊंगा। वो प्रेम से बुलाती थी गोपियां, तब उनके घर में जाते। एक दिन गोपियों ने यशोदा ने कहा कि तुम्हारे घर में खाए तो हमको बता देना और पकड़ के लाके दिखा देना। गोपियों ने आपस में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया कि आज तो पकड़ के ले जाएंगे कन्हैया, क्या करना है? बोलो घंटी बांध दो दरवाजे के ऊपर, खिड़की में, उखल में, छीके में घंटियां बांध दो। कहां से आएगा? खिड़की से आएगा, घंटी बजेगी, अंदर जाके पकड़ लेंगी। दरवाजे से जाएगा, उखल को उठाएगा, घंटी बजेगी, कन्हैया श्री धामा के, सुधामा के, मधुमंगल के साथ चलो 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 आज हमारे को बुलाया है। गोपी ने मक्खन के लिए वहां गए, घंटियों को देख के आश्चर्य, अरे घंटी, गोपियां बड़ी होशियार हो गई, घंटी बांधती हमको पकड़ना चाहती। अब कन्हैया तो त्रिलोकी नाथ है, पर किसी घंटी को कोई घंटी नहीं बजेगी। अब घंटियां बजी नहीं, सब कूद के अंदर गए, कोई घंटी नहीं बजी। उखल उठाया, घंटी नहीं बजी। माखन उतारा, घंटी नहीं बजी। मक्खन दे दिया भक्तों को खाओ, ग्वालों को दिया खाओ, बंदरों को फेंका बंदर खाए, बंदर भी ऐसे करने लगे तो कन्हैया ने हाथ से उंगली लेके मक्खन को चखा और सब घंटियां बज गई। आप तो कन्हैया बोला क्यों घंटियां बजी, मना किया था ना, बोला क्यों, शास्त्र की बात माने कि आपकी बात माने भगवान, बोला क्यों, बोला शास्त्र में लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, अब आपको भोग लग रहा है तो घंटी तो बजेगी, तो शास्त्र की बात माने कि आपकी बात माने। तब भगवान ने कहा शास्त्र की बात को मानना चाहिए, ये प्रमाण है। रामचंद्र अपने पिताजी को जब तर्पण करने लगे तो महाराज दशरथ का हाथ बाहर निकला, पंडित जी पूजा कराने वाले ने कहा महाराज हाथ के ऊपर पिंड मत रखिए, क्यों, मेरे पिताजी का हाथ निकला, बोला सबके पिताजी का हाथ नहीं निकलेगा, शास्त्र में कुश के ऊपर रखने का नियम है, आपको कुश के ऊपर ही पिंड रखना पड़ेगा, शास्त्र को प्रमाण करके मानना है। तो जीवन में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र हमारा प्रमाण है, वही हमारा मार्गदर्शक है। भाग्य से सबके घर में भगवत गीता होगी, भागवत होगी, रामायण होगी, लेकिन पढ़ने वाले कितने, हमारा सरल सा प्रश्न, ये हमारी कब से ऐसी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है कि जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं। बोला कब पढ़ेंगे, बोला हम चले जाएंगे पीछे लोग पढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ आधुनिक मानव की मानसिकता की बात कर रहा हूं, मोबाइल तो सब आजकल खरीदे हर एक के पास पड़ा है ना, जब खरीद करते हैं मोबाइल तो बड़ा अच्छा सा एक किताब साथ में आता है कि नहीं आता, उसके अंदर सारे कैसे कैसे इसको उपयोग में लाना है, कब चार्ज करना है, कितना चलेगा, सब लिखा होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों ने उसको पढ़ा है, कभी हमने पढ़ा है उस किताब को, आपने मोबाइल है बेटी, नहीं नहीं, वेरी गुड, आजकल बड़ा आदमी हुआ जिसके पास नहीं है, कि भाई बच्चे लोग आपने पढ़ाया कभी मोबाइल के अंदर क्या है, किताब को पढ़ कभी पढ़ा है, लेकिन सब संभाल के रखते हैं किताब को अलमारी के अंदर, क्यों, सर वारंटी का, खराब हो गया तो बदल के मिलेगा, पढ़ता कोई नहीं है, सच है कि झूठ है, हमने ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी आजकल की मानसिकता है, ठीक ऐसे ही हमने लाल कपड़े में गीता को भागवत को बांध के घर में रखा है, वारंटी है, गारंटी है, कभी ना कभी कोई पढ़ेगा हमारा उद्धार होगा, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी सोच है, हमको रोज पढ़ना चाहिए, रोज अपने आप को टीका लगा के, जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करके घर से निकलते हो तब सारा दिन बात कर सकते हो ना, ऐसे अपने आप को रोज चार्ज करके घर से निकलना चाहिए, अपने आप को चार्ज करने का मतलब भगवान के साथ अपना कनेक्शन मिलाना, रोज सुबह सुबह भगवान के साथ अपना कनेक्शन मिला लिया करो, उसकी वायर जैसे आती है, ये हमारी वायर है, ये हमारी कनेक्शन की वायर है, ये जैसे मोबाइल के साथ मिलता है हमारे को कनेक्शन, ये हमारी वायर है, सुबह उठ के इसके ऊपर भगवान के नाम का स्मरण करके अपने आप को रिचार्ज कर लो, पूरे दिन आप अच्छी तरह से आपकी बैटरी चलेगी, अच्छी चलेगी, और कहीं कोई संकट कोई मुश्किल आई तो भगवान रक्षक है। भगवद गीता में शिक्षा क्या दे गए भगवान, क्या शिक्षा भगवान ने सीधा ऑर्डर क्या दिया, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भगवद गीता में दो बार ये श्लोक आया है, नवे अध्याय का अंतिम श्लोक मन मना भव मद भक्तो, 18वें अध्याय का सबसे मुख्य श्लोक मन मना भव मद भक्तो, दो बार ये श्लोक आया, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, तो मेरे भक्त बनो भगवान ने कह दिया, और भगवान ने जाकर वापस तो यहां से लीला समाप्त करके 125 साल रहे, 11 साल वृंदावन में रहे, 18 साल मथुरा में रहे, और बाकी का साल 125 साल में बाकी द्वारका में रहे, तीन जगह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की, भगवान श्री रामचंद्र तो हजारों साल तक रहे, 16,000 साल से ज्यादा राज किया था, तभी तो राम राज सबको याद है, राम जी के राज में किसी बाप के जीते जी उसके बेटे की मृत्यु नहीं होती थी, वो नियम था, बाप जिंदा है तो बेटा नहीं मर सकता, और एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, उसने शिकायत किया के राम जी को कि आपसे कोई त्रुटि हुई है महाराज, मेरे मैं पहले जन्म मेरा हुआ, मेरे को पहले मरना चाहिए, मुझसे पहले मेरा बेटा क्यों मरा। और राम जी ने उस वक्त सभा बुलाई, सब ऋषि आए, अंगिरा ऋषि आया, गौतम आया, कणाद आया, जो भी नारद जी आए। और तब नारद जी ने कहा इस वक्त अयोग्य पुरुष कोई तपस्या कर रहा है, उसको तपस्या का अधिकार नहीं है, वो तपस्या से आतंक फैलाएगा और आपके राज में ये हो रहा है, इसका ये परिणाम है। राम जी उसी वक्त अपने राज को भरत को देकर पुष्प विमान का आह्वान किया और जाके उत्तर में तलहटी में हिमालय की किसी आदमी को तपस्या करके देखा, उल्टा लटका वो तपस्या कर रहा था। पूछे कौन हो, उसने अपना परिचय दिया और राम जी ने उसने गर्दन काट दिया। और उस वक्त इंद्र ऊपर से आया और इंद्र ने कहा आपने अच्छा किया, अयोग्य व्यक्ति तपस्या करे तो तपस्या के फल से दूसरों को कष्ट देगा। जैसे एक न्यूक्लियर वेपन का जिसको समाचार था, खान को पूरी दुनिया परेशान थी कि नहीं, एक आदमी की वजह से पूरी दुनिया परेशान थी कि नहीं थी, क्योंकि अयोग्य पुरुष के पास कोई जानकारी होगी तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। तपस्या करता था ब्राह्मण तो उस तपस्या के बल से लोगों को आशीर्वाद देता था, किसी के गर्दन नहीं काटता था। उस वक्त अंदर को राम जी कहते हैं उस ब्राह्मण का बच्चा बोला वो ये इसका गर्दन कटा और जीवित हो गया, वो उसी वक्त जीवित हो गया। उस वक्त किसी को पीड़ा नहीं होती थी, हरेक को अपना घर था, हरेक के पास मुकुट था सोने का, कानों के कुंडल थे। ये राम जी के राज का वर्णन है। तो इतने ये राज करके ये दिखा के गए कि इस दुनिया में सुखी कैसे रहा जा सकता है। तो हमको सीखना है कि इस दुनिया में सुखी कैसे रहना चाहिए, आनंद कैसे प्राप्त करें, और जीवन हमारा इतना सरल होना चाहिए कि हमें रात को आराम से नींद आ जानी चाहिए, रात को किया पे सोए तो नींद आ जानी चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया की समस्या है रात को नींद नहीं आती है, बहुत से लोगों को रात को सोना लोगों के लिए समस्या हो गई। और पुराने लोग 7:30, 8, 9 बज गए तो बहुत हो गया, नींद तो पहले आती थी, अब नींद उड़ गई आंखों। पहले लोग रात को तारे देखते थे, यहां जिन्होंने में रात को तारे देखते हैं ना, देखते हैं ना, छत के ऊपर चढ़ जाओगे तो दिख जाएगा, लेकिन बंबई में रात के तारे नहीं दिखते, दिन के तारे सबको दिखते। बड़े शहरों में रात के तारे सभी बंद है, कमर में बंद है, कहां से तारे देखे नहीं है बड़े शहरों के लोगों ने, लाइट के अंदर तारे, लाइट जाती है तो अचानक बाहर गए तो कोई तारा दिखता है, ये तो उन लोगों को दिन के ही तारे दिखते हैं, उनका हाल तो ऐसा है, रात के तारे देखना ही बंद कर दिए उन्होंने। तो सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देते थे उठ के, ये नियम था, ये कुछ परंपराएं थी, वो सब आस्ते आस्ते लुप्त होती जा रही है। इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये दायित्व हमारे आप बड़ी पीढ़ी के ऊपर है कि आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे। धन देके जाओ, बड़ी गाड़ी देके जाओ, बड़ा घर देके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन सब लोगों को देखा हमने जिनके पास ये सब चीजें थी, वो सब छोड़ के आ गए। और उन जो हिप्पियों को जो सब घर छोड़ के हमारे साथ रहता है, अमेरिका में डॉक्टर का बेटा है, 40 साल से महाराज के शिष्य है, वो कहते हैं मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है कि हमको मालूम भी नहीं है कितना है, लेकिन मेरे को कहा कि आप पढ़ो, मैं पढ़ने गया तो पढ़ने के लिए मैं सोशल साइंस पढ़ने गया तो मुझे कहा कि आप लोगों को सुखी बनाओ, लोग जो दुखी हैं उनको सुखी करो, यही काम है ना सोशल वेलफेयर का। तो मैंने सोचा क्या मैं दूसरों को सुखी बनाऊं, मैं सुखी हूं क्या? जो सुखी खुद होगा वो दूसरे को बनाएगा ना। उसने कहा अरे मेरे पास धन है मैं सुखी नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है मैं सुखी नहीं हूं, तो मैं दूसरों को सुखी कैसे करूं? कभी हम डॉक्टरों को जाके अस्पताल में बात करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, सत्संग करते हैं डॉक्टरों के पास। अभी मैं एम्स में था, 21 दिन तो रोज राम कथा करते थे, मेरे को लोग सब यहाँ आते हैं दुखी है, बोला हाँ जी दुखी आते हैं, बड़े पीड़ा में आते हैं, बोला हाँ जी, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं, यही तो है ना, अस्पताल में रोगी जाएगा दुखी है और आपसे सुखी होना चाहता है। तो हमने पूछा कि आपके पास सुख है क्या? आप अपने जीवन में सुखी हो, ये मेरा प्रश्न उनसे था, और एक ने भी नहीं कहा कि मैं सुखी हूं, मैं सच बोल रहा हूं।
जब हम सुखी नहीं तो दूसरों को सुखी कहां से बनाएंगे? जब हम सुखी होंगे तो दूसरों को सुखी बना सकेंगे ना।
तो उसने कहा मेरे पिताजी के पास तो बहुत धन है और मैं ये पढ़ने आया हूं सुखी दूसरों को बनाऊं, मैं ही सुखी नहीं हूं। और दुखी दूसरे सुखी कैसे होंगे? धन देंगे तब ना। भी किसी को पैसा दो, जायदाद दो, घर दो, मकान दो, जमीन दो तो सुख खुश होगा, यही किसान थे ना। बोला वो तो मेरे पास है फिर भी मैं सुखी नहीं हूं तो वो कैसे सुखी होगा। और फिर ऐसे जो लोग ये सब कुछ छोड़कर और नशे को अपना के सुखी होने का प्रयास कर रहे थे, उनको बिठाकर अध्यात्मता भगवत गीता के आधार के ऊपर उनके जीवन में परिवर्तन लाए और वो उस जीवन को छोड़कर, उस वक्त में अमेरिका की अखबार में लिखा था स्वामी जी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी, हिप्पियों को स्वामी जी ने हैप्पी बना दिया। हमने इतने करोड़ों डॉलर खर्च किए लोगों को नशा छुड़ाने के लिए और इन्होंने दो मंजीरों से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बस केवल इस कीर्तन के द्वारा वो भी किसी पार्क में बैठकर और सबको सबके जीवन को बदल दिया और उन लोगों ने 10 साल में पूरे दुनिया के अंदर वैदिक धर्म के बड़े मंदिर स्थापित किए, भगवत गीता को दुनिया के सब भाषाओं में अनुवादित किया। इस वक्त दुनिया में भगवत गीता दुनिया के 150 से अधिक भाषाओं में और सब देशों में वितरण होती है, अरबी और चाइनी भाषा से लेकर हर भाषा में पुस्तक वितरण हो रहे हैं। तो उन लोगों से जिनको दुनिया ने बेकार समझ के छोड़ दिया था, उन सबको इकट्ठा करके दुनिया के अंदर आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित किया, भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया और पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की। तो आपके शर्मा जी, ये जो सुनील जी और प्रेरणा गए तो दुबई से पैसा कमाने, अच्छा है भगवान करे और ज्यादा कमा के आए, लेकिन वहां भी इनको भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद उस देश में भी प्रचार हो रहा है और 700-800 लोग वहां हर शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं। हम तो 3-4-5 बार जा चुके हैं वहां, सब घरों में जाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से उधर भगवान का भजन कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के उतना नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये अनुभव करके देखा है। तो कैसे भी हमारे को रोड का इतना अनुभव नहीं था, जो हमारे विचार से 150 किलोमीटर है वहाँ से 3 घंटे लगने चाहिए, 4 घंटे हमने अंदाजा लगाया मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पहुँचते 6.5 घंटे हो गए। बीच में रोड तो है ही नहीं रास्ते में, पहले बिहार में ऐसे रोड मानते थे कि 4 पहिए गाड़ी के कभी रोड पर नहीं होते, 4 पहिए कभी रोड पे नहीं होते बिहार के रोड में पहिए रहा, लेकिन ये टुकड़ा पूरा सिर्फ नारनौर में एक टुकड़ा थोड़ा सा ठीक था, बाकी सब रोड है ही नहीं। और यहाँ ये आपके जुन्नू वाला थोड़ा टुकड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ भी आते हुए बड़े खड्डे। जो भी हो, आज ये संजोग था कैसे भी अपने को मिलने का। हमारा तो हाथ जोड़ के आपको विनती है, अपनी संस्कृति को और अपने इस धरोहर को आप संभालिए और अपने बच्चों को ये देकर जाइए। और इस गीता की शिक्षा हमारे हर घर के लिए अनिवार्य है और ये हमारे घरों में होगी तो हमारा भविष्य और पूरे विश्व के अंदर भारत, जैसे पहले ही भारत पूरे विश्व का सदा नेता रहा है, आज भी लोग आध्यात्मिकता के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, हमारे ऊपर ये दायित्व। एक बार प्रभुपाद जी महाराज ने कहा, मैं 70 साल का बूढ़ा आदमी यहाँ से गया हूँ जो दुनिया ने बड़े प्रेम के साथ भारतीय संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को अपनाया है, और कहा कि मैं अकेला गया था, आप लोग एक टुकड़ा पाकिस्तान यहाँ से हो गया, उसके लिए परेशान हो, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना सकते हैं, 5-10 और आगे निकल आओ और भगवान के नाम पर इसका प्रचार करना शुरू करो, तो पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत किया जा सकता है। और आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, और आप सबसे हमारी विनती है कि आप अपने घरों में जाएं भी, ये सनातन धर्म के सदाचार को इस तरीके से अपनाइए कि भविष्य में बच्चों के पास ये संस्कार हमारे रहें। और विलम्ब के लिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा करना, तो रास्ते में हम तो रुके भी एक मिनट कहीं नहीं है, जैसे बैठे हैं 12:15 बजे गाड़ी से यहाँ उतरे, लेकिन फिर भी देर हो गई। अगर भविष्य में कभी योग बना तो बैठ के शास्त्र को और समझने का प्रयास करेंगे। किसी को कोई जिज्ञासा हो, किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, मेरे को पहुंचना है काम, तो वहाँ लोग कटे होंगे, फिर उधर उनके लिए भी लेट हो जाऊंगा। मैं सोचा 3:30 पहुंच जाऊंगा यहाँ, कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा। बोलिए, किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, नहीं तो प्रसाद सबको दे दूंगा
आपके द्वारा,
हम ही दे। 41 मिनट हो गए, 45 मिनट का कथा होना चाहिए, 41 मिनट हो ही गए, 5 मिनट भगवान के नाम का कृष्ण,
भगवान के पुष्पांजलि करेंगे सबसे।
आप ऐसे यहाँ से पूछ लेते, भगवान को यहाँ से प्रसाद लेने बस, और हमारे कृष्ण मंत्र जरा चलने बोलते रहते हैं। आप लोग कीर्तन करो माता जी माइक लेकर, सब लोग करेंगे, यहाँ से भगवान को पुष्प अर्पण करें, यहाँ से प्रसाद लीजिए और